अलंकार योजना। संस्कृत अलंकारिकों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। काव्य के शेष उपकरण इसी के पोषक हैं। दंडी ने अलंकार को काव्य का शोभकर धर्म माना है। अलंकार का शब्दार्थ भी यही संकेतित करता है। वामन का कथन सौंदर्यम अलंकारम विशेष महत्व रखता है। अलंकार ही सौंदर्य है का तात्पर्य में भेद नहीं करते। वामन का अलंकार रूप का बोधक है और सौंदर्य भावानुभूत का। ऐसी स्थिति में अलंकार योजना के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। रस समाहित चेता कवि जब अपने मन को रस केंद्रित करता है तो अलंकारों का औचित्यपूर्ण विन्यास अपने आप हो जाता है। आनंदवर्धन ने कहा है तत् कुष्ठ में रस प्रकाशिनो वाक्य विशेषा एव रूपका दयोलंकारा। रूपकादि अलंकार रस के प्रकाशक हैं। यह तभी संभव है जब वे अंगीभूत कुष्ठ में स्ट्रक्चरल रूप में प्रयुक्त हों। संभवतः इसी तथ्य को लक्ष्य करते हुए अभिनव ने उन्हें रासाक्षिप्त और अपृथग्यत्न निर्वर्त्य कहा है। कवि अपने भावों और विचारों को पाठकों तक प्रेषणीय बनाता है। भावों और विचारों को पाठकों तक तद्वत प्रेषित करने के लिए उसे अपनी वाणी को असामान्य बनाना पड़ता है अथवा एक विशेष स्थिति में उसकी वाणी वक्रतापूर्ण हो जाती है। ऐसा होने पर कवि के भाव और अनुभूति दोनों रागात्मक होकर पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भी समान भाव या अनुभूति जागृत करते हैं। अलंकार इस क्रिया में सहायक सिद्ध होता है। रेमंड का विचार भी बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है। द वन ट्रूथ अंडरलेइंग ऑल द रूल्स लेड डाउन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिगर्स इज दैट नथिंग इज गेन्ड बाई एनी यूज ऑफ दोज विच डू नॉट एड टू द इफेक्ट ऑफ द थॉट टू विच दे गिव एक्सप्रेशन। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अलंकार वस्तु और भाव की स्पष्टता और रागबोधात्मकता बनता है। जहाँ उसकी प्रधानता हो जाती है वहाँ उसकी रागबोधात्मकता समाप्त हो जाती है क्योंकि वह अंगभूत कुष्ठ में स्ट्रक्चरल नहीं हो पाता। अलंकारों को सामान्यतः तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। सादृश्य मूलक, विरोध मूलक तथा साहचर्य कुष्ठ में एसोसिएशन मूलक। इसमें सादृश्य मूलक अलंकार ही बिंब या सम्मूर्तन की स्थापना कर सकते हैं। शेष अलंकार मुख्यतः चमत्कार विधायक होते हैं। सादृश्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। रूप सादृश्य, धर्म सादृश्य और प्रभाव सादृश्य। कहीं कहीं इन्हें अलग अलग रूप में देखा जाता है तो कहीं कहीं समन्वित रूप में। रूप बाह्याकार हैं तो धर्म और प्रभाव अंतःकरण की विशेषताएं। केवल रूपाकार को अंकित करने के लिए प्रयुक्त अप्रस्तुत संवेदनात्मक नहीं होते जैसे भीड़ के समान कमर। श्रेष्ठ अप्रस्तुत वे ही हैं जो प्रस्तुत के रूप धर्म तथा प्रभाव से सादृश्य रखते हों। वस्तुतः प्रस्तुत को रूपायित करने के लिए जिन अप्रस्तुतों का प्रयोग किया जाता है वे हूबहु प्रस्तुत के समान नहीं होते। वे किन्हीं अंशों में प्रस्तुत के सदृश होते हैं पर अपनी बिंब विधायनी शक्ति के द्वारा उसे चारुता प्रदान करते हैं। उपमागत अप्रस्तुत रूपकगत अप्रस्तुत की अपेक्षा कम संवेगात्मक होता है। उत्प्रेक्षा में चमत्कारवादिता अधिक होती है। एक ही अप्रस्तुत का प्रयोग तीनों अलंकारों में किया जा सकता है पर उसकी अर्थगत सघनता में अंतर आ जाता है।